दिन भर तारीख 8 दिसंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। झारखंड में भूख से महिला की मौत के आरोप को जिला प्रशासन ने किया खारिज, लेकिन माना नहीं मिल रहा था राशन।
राशन कार्ड बना हुआ था एंटिल अक्टूबर, उन्हें मिला है अलॉटमेंट, नवंबर का नहीं मिला है, तो नवंबर के लिए वी आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डीलर।
गुजरात चुनाव में कल 89 सीटों पर वोटिंग, दूसरे चरण के प्रचार में नेताओं ने झोंका दम। और विवेचना में एक पड़ताल, बाबरी ध्वंस के लिए कितने जिम्मेदार थे तत्कालीन पीएम नरसिंह राव।
नवंबर 1992 में दो डेमोलिशंस प्लान हुए थे, एक था बाबरी मस्जिद का, बीजेपी और संघ परिवार प्लान कर रहे थे, और दूसरा था नरसिम्हा राव का।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। दिल्ली में जिंदा बच्चे को मृत बताकर सौंपे जाने के मामले में प्राथमिक जांच के बाद दिल्ली सरकार ने शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सरकार ने अस्पताल को आदेश दिया है कि पुराने मरीजों को दूसरे अस्पतालों में जाने का विकल्प दे सकते हैं या फिर उनका इलाज पूरा कर सकते हैं, लेकिन नए मरीजों को वे ना ही भर्ती कर सकेंगे और ना ही उनका इलाज कर सकेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
जो ये हुआ ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इस हॉस्पिटल के साथ पहले भी इनको नोटिस इशू किए जा चुके हैं, ईडब्ल्यूएस के केस में भी, एडिशनल बेड्स के इशू में भी, वहाँ पर भी इनकी गलती पाई गई है, तो मैक्स शालीमार बाग हॉस्पिटल का दिल्ली सरकार लाइसेंस कैंसिल करती है।
ब्रेग्जिट में महीनों तक चली लंबी बातचीत के बाद एक अहम कामयाबी मिली है। यूरोपीय आयोग सहमत हो गया है कि जिन्हें अलगाव के मामले कहा जा रहा है उन पर पर्याप्त प्रगति कर ली गई है। इन मामलों में आयरिश सीमा की स्थिति, ब्रिटेन का वित्तीय दायित्व और यूरोपीय संघ के नागरिक अधिकारों की बात शामिल है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने इसे एक मुश्किल जीत और सबके हित में बताया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जियां क्लॉड जंकर ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि बाकी 27 देश इस समझौते से सहमत होंगे। अब ब्रेग्जिट की बातचीत का अगला चरण शुरू होगा जो यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के भविष्य के रिश्ते पर आधारित होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने कहा,
Getting to this point has required give and take on both sides.
यहाँ तक पहुँचने के लिए दोनों तरफ से चीजें छोड़ी गई हैं और मेरा यकीन है कि यह साझा रिपोर्ट पूरे ब्रिटेन के हित में है। मैं व्यापार और सुरक्षा पर अगले चरण की बातचीत शुरू करने का स्वागत करती हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि मार्च 2019 के बाद यूरोपीय संघ से अलग होने के ब्रिटिश लोगों के फैसले को लागू करते हुए हम यूरोपीय संघ से गहरी और सफल साझेदारी बनाना चाहते हैं। ये थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेजा मे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका की ओर से यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दिए जाने के बाद वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। फलस्तीनी संगठनों की ओर से इंतफादे के ऐलान के बाद इसराइल ने शहर में सैकड़ों अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। यरूशलम के प्रवेश द्वारों में से एक दमिश्क द्वार पर बैठे फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों को इसराइली बलों ने जबरदस्ती उठवा दिया। रामल्लाह, बेथलहम और हेब्रोन में फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल किया गया। गुरुवार को इसराइली सैनिकों से हुई झड़पों में दर्जनों फलस्तीनी घायल हुए थे। अमरीका ने फलस्तीनियों को चेतावनी दी है कि उसे अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ बातचीत नहीं रोकनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति जैकब जुमा की ओर से की गई सार्वजनिक अभियोजन के राष्ट्रीय निदेशक की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने निदेशक शॉन अब्राहम्स को पद खाली करने को कहा है। मुख्य अभियोजक के पास यह तय करने की जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रपति जुमा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप वापस लिए जाएं या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि जैकब जुमा के डेप्यूटी सिरिल रामाफोसा को नया अभियोजक बनाया जाना चाहिए। कोर्ट के फैसले को जैकब जुमा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जुमा ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जापान लंबी दूरी की मिसाइलें हासिल करने की योजना में है। ये क्रूज मिसाइलें देश के लड़ाकू विमान दस्तों में तैनात की जाएंगी और उनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक की होगी। अभी जापान के पास जो मिसाइलें हैं वे सिर्फ 300 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। ये खरीदारी विवादास्पद भी हो सकती है क्योंकि जापान का संविधान सेना को आत्मरक्षा तक सीमित रखने की बात कहता है। एक्समैन फिल्मों के लिए मशहूर हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर ब्रायन सिंगर ने एक नाबालिग शख्स से बलात्कार के आरोपों से इनकार किया है। कथित पीड़ित के वकीलों का कहना है कि घटना 2013 में एक पार्टी के दौरान हुई थी जब डायरेक्टर ने 17 वर्षीय लड़के का बलात्कार किया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। गुजरात फिलहाल ये राज्य भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है।
कल एक सीनियर नेता ने मुझे कहा, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग आपके बारे में गलत बात बोलते हैं।
राज्य की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, कल 89 सीटों पर मतदान होगा। जिन 89 सीटों पर कल मतदान होना है वहां प्रचार थमे 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है वहां रैलियों का दौर आज भी जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से कमान संभाली और एक दूसरे पर तीखे हमले किए, व्यक्तिगत हमले भी हुए। हम गुजरात से उठे सवालों की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत उस सवाल से जो झारखंड से बार बार उठ रहा है और तमाम लोगों की संवेदनाओं को झकझोर रहा है। झारखंड के गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड में बीते दिनों एक 64 साल की महिला की भूख से मौत की खबर आई। रिपोर्टों में कहा गया कि महिला को राशन नहीं मिल रहा था और उनकी मौत भूख की वजह से हो गई। हमारे साथ ही रवि प्रकाश गढ़वा में ही हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गांव में मौजूद हैं, क्या जानकारी आपने जुटाई है और क्या आपकी उनके परिजन से कोई बात हुई है?
जी, इनके बेटे से बात हुई है मेरी, जो छोटा है, बहुत अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर पाता है, लेकिन वो यह बता रहा है कि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। जब इनकी मौत हुई है दिसंबर के पहले सप्ताह में, 1 दिसंबर को, तो इनके घर में खाना पिछले 8 दिनों से नहीं बन रहा था। स्थिति यह है कि पिछले एक महीने से क्योंकि इनको राशन नहीं मिला था, तो ये किसी तरीके से कभी खाना बनता था कभी नहीं बनता था और ये इस तरीके से गुजारा चल रहा था। सबसे दुखद बात यह है कि 27 नवंबर को, मतलब अपनी मौत के 4 दिन पहले, ये राशन लेने राशन डीलर के दुकान पे गई थी और डीलर ने इनके अंगूठे का निशान अपनी मशीन में ले लिया, जिस POS मशीन से झारखंड में राशन का वितरण किया जा रहा है, और राशन नहीं दिया, यह कहकर कि राशन हम बाद में दे देंगे, और इसके 4 दिन के बाद इनकी मौत हो गई।
जी, प्रेमनी कुंवर इनका नाम था। हालांकि जिला प्रशासन ये नहीं मान रहा है कि इनकी मौत जो हुई वो भूख से हुई। हमने डिप्टी कमिश्नर जो वहाँ की हैं गढ़वा की, डॉक्टर नेहा अरोड़ा से बात की, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए।
चलिए, इसमें इनका पोस्टमार्टम करवाया गया है लेडी का, एंड फूड हैज बीन फाउंड इन हर स्टमक, सो देयरबाय डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन हैज बीन रूल्ड आउट।
लेकिन ये जो बार बार रिपोर्टें आ रही हैं, और इनके बेटे का कहना था कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वही थोड़ा बहुत जो लेकर आते थे वही वो खाती थी। इन सब
इनका राशन कार्ड बना हुआ था एंटिल अक्टूबर, उन्हें मिला है अलॉटमेंट, नवंबर का नहीं मिला है, तो नवंबर के लिए वी आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डीलर, उनके लिए भी, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा रही है। टिल अक्टूबर शी हैज गॉट फूड ग्रेन्स।
और ये भी बात आ रही थी सामने कि इनका जो लिंक था आधार के थ्रू वो दूसरे किसी और के साथ हो गया था।
इंक्वायरिंग, दैट वी आर इंक्वायरिंग, बिकॉज उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट काफी इन्वॉल्व है ना, तो दैट इंक्वायरी इज स्टिल अंडर प्रोसेस।
तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लगता है कि इनकी मौत की क्या वजह है? पोस्टमार्टम के बाद ये सारी रिपोर्टें तो आपके सामने हैं।
हाँ, नहीं देखिए, देयर आर मल्टीपल रीजंस है ना, सो देयर आर मेनी, मतलब शी वाज नॉट वेल आल्सो, सो हर हेल्थ वाज नॉट फाइन, बट शी हैज नॉट बीन डायग्नोस्ड, तो मतलब एक सर्टेन कॉज इसमें असाइन करना, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। एज सच वो कहीं जहां पे भी दिखा रही थी, शी वाज गेटिंग ट्रीटमेंट, बट एज सच नो डायग्नोसिस हैज बीन फाउंड इन एनी ऑफ द ट्रीटमेंट स्लिप, शी वाज अनवेल, दैट इज व्हाट वी हैव हर्ड आल्सो अबाउट।
और इनके बेटे का जो कहना है, मैडम क्या आपकी बात हुई इनके बेटे से?
जी, इनके बेटे से वहाँ पे वीडियो है ना, वो मिले हैं इनसे।
क्या आपके पास भी इस तरह की बातें आई हैं कि वो कह रहे थे कि हमारे घर पे कुछ खाना ही नहीं था, वो जो स्कूल से कुछ लेकर आते थे या मांग कर लेकर आते थे वही उनकी माँ खाती थी?
नहीं, दैट डिटेल्ड इंक्वायरी वी आर कंडक्टिंग है ना, तो वो जैसे कंप्लीट हो जाता है तो वी कैन लेट यू नो।
DC कह रही थी कि जाँच हो रही है और वो ये मान रही हैं कि राशन नहीं मिला था, लेकिन ये नहीं मान रही हैं कि भूख की वजह से मौत हुई। रवि प्रकाश, इसके पहले झारखंड के ही सिमडेगा से लगभग ऐसी स्थितियों में एक बच्ची की मौत की खबर आई थी, क्या मामला सिर्फ राशन डीलरों पर ही ठीकरा फोड़ने से पूरा हो रहा है? क्या सिस्टम कोई सबक लेने को तैयार नहीं है? क्या स्थिति है झारखंड में?
देखिए, झारखंड में भूख से मौत का सबसे चर्चित मामला जिसकी आप चर्चा करते हैं सिमडेगा जिले का, जो 11 साल की बच्ची थी संतोषी वो भात भात कहते हुए मर गई थी क्योंकि खाना नहीं था घर में, भात नहीं खा पा रही थी। इसके बाद तीन और घटनाएं हुई। एक धनबाद जिले में एक रिक्शा वाला था बैजनाथ रविदास, उसकी मौत हुई। इसमें भी आरोप लगा, ये कहा गया कि वो भूत से मरा है। फिर रूपलाल मरांडी एक वृद्ध थे, उनकी मौत देवघर जिले में हुई, उनसे भी यह बात हुई कि भूत से इनकी मौत हुई है। और गढ़वा जिले में ही अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में सुरेश सुराव नाम के एक आदमी की मौत हुई थी, जिसमें भी यह बात गांव वालों ने कही कि इनकी मौत भूख से हुई है क्योंकि इनको खाना नहीं मिल रहा है। दरअसल पूरे मामले में क्या है कि सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई भूख से मर रहा है।
हाँ, लिस्ट लंबी हो रही है लेकिन संवेदनाएं जाग नहीं पा रही है। रवि, आपने ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब बात विकास की, यानी गुजरात की, जिसका मॉडल पेश किया जाता है विकास के तौर पर, लेकिन विकास की बात वहां भी नहीं हो रही है। गुजरात में कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। हमारे साथी रजनीश कुमार उसी इलाके में हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले उनसे बात की और पूछा कि चुनाव के कुछ घंटे पहले वो क्या कुछ देख रहे हैं।
मैं अभी अंकलेश्वर में हूँ और ये अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर है। अंकलेश्वर भरूच का इलाका है। कल वोटिंग होने वाली है लेकिन इतना साफ तौर से कहा नहीं जा सकता है कि किसके पक्ष में माहौल है या कोई लहर है। लहर जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि कहा जा रहा है कि इस बार टक्कर तो कांग्रेस थोड़ी दे रही है।
सवाल यह है, चुनाव प्रचार जो है वो केवल गुजरात में नहीं पूरे देश में चर्चा में है। अलग अलग मुद्दे सामने आए लेकिन जो लोगों से जुड़े मुद्दे थे उन पर बातें कम हुई। लोगों का इस बारे में क्या कहना है?
वास्तव अगर लोगों से, आम लोगों से बात करेंगे और नेताओं के आरोप और प्रत्यारोप के बारे में बात करेंगे तो उस रूप में रिएक्ट नहीं करते हैं। उनकी उस रूप में दिलचस्पी नहीं होती है। या तो ऐसा लगता है कि उन्हें मन बना लिया कि किसको वोट करना है और ये मन बना लिया कि उनको किसको वोट नहीं करना है। और जो बड़े मुद्दे रैलियों में जिन मुद्दों की बात की जाती है वो मुद्दे जनादेश तय करते हो या जनमत तय करते हो, अगर लोगों से बात करें तो उस रूप में रिफ्लेक्ट नहीं होता है।
मतदाता साफ तौर पर कुछ कहने को तैयार नहीं है लेकिन नेता लगातार दावे करने में जुटे हैं। हमारे साथी रजनीश ने ही कांग्रेस के सीनियर नेता अहमद पटेल से बात की और सबसे पहले पूछा कि कांग्रेस राज्य की सत्ता में वापसी का दावा किस आधार पर कर रही है।
किसान परेशान है बिकॉज ऑफ दिस नोटबंदी एंड GST। काफी व्यापारी वर्ग, बाकी लोग भी काफी परेशान, आम जनता भी परेशान है नोटबंदी और बाकी चीजों से। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स है ट्राइबल एरिया में भी, महंगाई और बाकी लोगों के लिए भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान हैं ट्राइबल एरियाज में। इन्होंने सिर्फ मैनिफेस्टो में वादे किए थे। अगर उनका मैनिफेस्टो आप देखेंगे पहले के भी 2002, 7 और 12, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। मोस्ट सीरियस थिंग कि आपके बार उन्होंने मैनिफेस्टो ही अनाउंस नहीं किया, मैनिफेस्टो ही लेके नहीं आया।
युवाओं की जो तिकड़ी आई है अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक, आपको लगता है
काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि जनरली हार्दिक फॉर इज सोसाइटी, समाज के लिए इन्होंने जो अन्याय हुआ है उसके लिए काफी कुछ इन्होंने मेहनत कर रहा है। बाकी लोग, अल्पेश पर्टिकुलर ठाकुर कम्युनिटी में काम कर रहा है, जिग्नेश उनका भी रोल है, शुरू में भी काफी अच्छा रहा, जब भी कोई इश्यू आए वो लोग ये लोग इश्यू को लेकर चले रहे, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है लोगों में।
राहुल गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप उन पर लगाया जा रहा है।
नहीं, इट्स नॉट अ सॉफ्ट हिंदुत्व। अगर जहाँ जाते हैं कोई कहते हैं टेम्पल में जाना तो चले जाते हैं, कहीं दरगाह पे चले जाते हैं, नथिंग रॉन्ग। पहले भी इंदिरा जी भी, उनकी मदर भी, दे यूज्ड टू डू दैट।
22 सालों का सर गुजरात BJP का शासन और 3 साल सर अभी दिल्ली का शासन, तो क्या 22+3 है या केवल 22 पे लोग सवाल पूछ रहे हैं या फिर
22+3? क्योंकि गुजरात उनके बाद के मुख्यमंत्री और पहले के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। आज गुजरात की जो गुजरात मॉडल के नाम पे जो हालत बनाई हुई है, उन्होंने पूरा गुजरात बर्बाद किया है, तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो मिस्टर मोदी इज रिस्पॉन्सिबल। और देश की भी यही हालत कर रहे हैं क्योंकि ये बिना सोचे काम करते हैं, पहले काम करते हैं और बाद में सोचते हैं।
ये थे अहमद पटेल और उनसे बात कर रहे थे रजनीश कुमार। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। यरूशलम, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जोरदार प्रदर्शन हुए। मिस्र, जॉर्डन और ईरान से लेकर इंडोनेशिया और बांग्लादेश तक में प्रदर्शन हुए। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यरूशलम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से बात की और उनसे वहां की स्थिति के बारे में पूछा।
देखिए, मैं अभी पूर्वी यरूशलम के काफी करीब हूँ और यहाँ पर जो सामने जो दृश्य नजर आ रहा है वो ये है कि हजारों की तादाद में यहाँ पर फौज को उतार रखा है इसराइली प्रशासन ने। यहाँ पुलिस भी चारों तरफ चौकसी बरते हुए है और पूरे इलाके की नाकाबंदी हो गई है, उस इलाके की खास करके जहाँ पर की जो होली साइट है, जहाँ पर की वेस्टर्न वॉल है, जहाँ पर अलक्शा मॉस्क है, और हजारों की तादाद में दरअसल फलस्तीनी भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश से इकट्ठा हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। और यहाँ पर फलस्तीनी नेताओं ने ये ऐलान भी किया था कि लोग जो हैं वो यहाँ पर आए और उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन होंगे नमाज पढ़ने के बाद। इसराइल जो है वो आम तौर पर इस तरह की स्थिति में कई तरह की पाबंदियां लगाता है नमाज पढ़ने वालों पर, लेकिन आज इसराइल ने इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है और हजारों की तादाद में यहाँ फिलिस्तीनी जो है वो आए नमाज पढ़े और उसके बाद सड़कों पर चारों तरफ प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, पुलिस ने टियर गैस चलाया है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, लाठी चार्ज किया गया है और ये जो दृश्य है पूर्वी यरूशलम में जो है वो फिर भी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी जो इलाके हैं पश्चिम तट का इलाका या फिर गजा में बहुत सारे प्रदर्शन हुए, लेकिन पश्चिम तट के कई इलाके जहाँ पर की इसराइली सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है वहां पर काफी लोग हताहत हुए हैं, काफी लोगों को चोट आई है, जख्मी है और वहां पर काफी मुठभेड़ हुए हैं इसराइली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच।
पूरी दुनिया ने जो प्रतिक्रिया दी है वो इसराइल और ट्रंप के मुताबिक शायद नहीं आई है और इस बीच में जब माइक पेंस वहां पहुंचेंगे तो फलस्तीन अब उनके दौरे को किस तरह से देख रहा है, क्या कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर मिली?
पूरी दुनिया से जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये पहले से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। जहां तक माइक पेंस के दौरे का सवाल है तो उनका दौरा जो है वो मिस्र, इसराइल और पश्चिम तट का दौरा होना है।
बीबीसी इंडिया बोल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर की प्राथमिक सदस्यता निलंबित की। इससे पहले बीजेपी के कई नेता भी अपने विरोधियों के लिए इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। क्या राजनीति में ऐसी भाषा के लिए कोई जगह है? क्या हो सकता है इसका समाधान? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 9 दिसंबर शाम 7:30 बजे 1811-7000 और 1811-7001 पर मुफ्त फोन करें।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त विवेचना का। 25 साल पहले जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक राव को इस विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो कुछ इस मामले में उन्हें क्लीन चिट देते हैं। 6 दिसंबर 1992 को दिल्ली में क्या कुछ हो रहा था बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल आज की विवेचना में।
राम मंदिर के पुनर्निर्माण का आंदोलन केवल एक मंदिर के निर्माण का आंदोलन नहीं है, क्या राम को छोड़कर इस देश की कल्पना की जा सकती? क्या हमारे जीवन से, हमारे दर्शन से, हमारे चिंतन से, हमारी संस्कृति से, हमारी वाणी से, हमारी हर चित्रकला से, हमारी और विधाओं से राम को निकाला जा सकता है?
ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 6 दिसंबर 1992 से कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने की वकालत करते हुए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी सुनिए। समय बाबरी मस्जिद ढाए जाने से कुछ दिन पहले, स्थान अयोध्या।
राम का जन्म स्थान है, यहाँ एक भव्य मंदिर था, उसे तोड़ा गया, बाबर ने तोड़ा। बाबर तो हिंदुस्तान का निवासी नहीं था, बाहर से आया था, हमला करके लूटपाट करके यहाँ से समरकंद को चला गया। अब उसके नाम को काय करो रहे हो यहाँ? मगर नहीं, वो कहते हैं देखो राम हिंदुओं के और बाबर मुसलमानों के, और बोले कि राम जन्मभूमि को अगर हिंदू बनाना चाहता है तो बाबरी मस्जिद को मुसलमान ने बचाना चाहिए। ये तर्क बहुत खतरनाक है। हमारा कहना है कि श्री राम भारत के हर नागरिक के पुरखे थे, इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। राम का बंटवारा हिंदू और मुसलमान में नहीं हो सकता, राम सबके।
6 दिसंबर 1992, स्थान दिल्ली। उस दिन नरसिम्हा राव सुबह 7 बजे सोकर उठे। अखबार पढ़ने के बाद उन्होंने अगला आधा घंटा ट्रेडमिल पर वॉक कर बिताया। उसके बाद उनके निजी डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी आ गए। दोनों कुछ देर तक तेलुगु और अंग्रेजी में बतियाते रहे। उसके बाद रेड्डी अपने घर चले आए। दोपहर बाद जब 12:20 पर उन्होंने अपना टेलीविजन खोला तो उन्होंने देखा कि हजारों कार सेवक बाबरी मस्जिद के 3 गुंबदों पर चढ़े हुए हैं। डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने बीबीसी को बताया,
डॉक्टर का फर्ज निभाने मैं चला गया वहाँ पे। मुझे देख के एकदम अचंभा हो गया, फिर कहा कि क्यों आए इस वक्त, यहाँ पे क्यों आए इस वक्त। तो मैंने कहा कि सर आप थोड़ा इस बाजू वाले कमरे में आ जाइए। तो फिर वहाँ पे आए, फिर थोड़ा अभी नाराज थे, नहीं नहीं इस वक्त थोड़ी है देखना है मुझे, इस वक्त मैं बिजी हूँ। मैंने कहा जी नहीं, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, खाली ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर लूंगा। तो उस समय देखा कि उनका चेहरा लाल था, काफी एजिटेटेड थे, तो मैंने ब्लड प्रेशर लिया, काफी ज्यादा था, पल्स रेट भी देखा तो उसकी गति बहुत तेज थी। तो मैंने कहा सर थोड़ा दवाई मुझे और देनी पड़ेगी आपको।
उसी समय कार सेवक परमेश्वर दास हजारों कार सेवकों के साथ बाबरी मस्जिद की बाढ़ पार कर 450 साल पुरानी इमारत की तरफ बढ़ रहे थे।
सब लोग यहीं से अपना जय श्री राम और जय श्री राम का नारा मंच पर ही लगाते गए। कार सेवक ही अपना रफ्तार इतना पकड़ लिया, इतना तेज गति से पहुंच गए अंदर और ऊपर चढ़ गए ऊपर तक गुंबद में कि वो किसी को बस के नहीं था, कोई कुछ कहे समझाए, जो जहां था वहीं पर अपना तोड़फोड़ शुरू कर दिया। जा करके अंदर में जब गए और देखे कि इसमें कुछ लोग अपने आप में लग के तोड़ने फोड़ने लगे, वो लोग जैसे तैसे अगल बगल के स्थान में प्रवेश किए, पूछे कुछ है तो दो, नहीं दिए तो वो लोग ईंटा से ईंटा पत्थर से पत्थर मारकर, मैंने उस समय उनका उत्साह जो था ना इतना प्रबल था, साफ प्रबल के नाते सारा करतूत हुआ कांड हुआ।
जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, केंद्रीय मंत्री माखनलाल फोतेदार ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को फोन मिलाया। तब तक नरसिम्हा राव कथित रूप से अपने आप को एक कमरे में बंद कर चुके थे। माखनलाल फोतेदार अपनी आत्मकथा द चिनार लीव्स में लिखते हैं,
मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वो वायुसेना से कहें कि वो फैजाबाद में तैनात चेतक हेलीकॉप्टरों से अयोध्या में मौजूद कार सेवकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले चलवाएं। राव ने कहा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा इस तरह की आपात परिस्थितियों में केंद्र के पास जो भी फैसला जरूरी हो लेने की सारी ताकत मौजूद है। मैंने उनसे विनती की, राव साहब कम से कम एक गुंबद तो बचा लीजिए ताकि बाद में हम उसे एक शीशे के कैबिन में रख सकें और भारत के लोगों को बता सकें कि बाबरी मस्जिद को बचाने की हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री चुप रहे और लंबे ठहराव के बाद बोले, फोतेदार जी मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ।
नरसिम्हा राव की उत्साहहीन प्रतिक्रिया देख फोतेदार ने राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से मिलने का फैसला किया। राष्ट्रपति ने उन्हें 5:30 आने के लिए कहा। फोतेदार लिखते हैं,
जब मैं उनसे मिलने के लिए अपने घर से निकलने लगा तो मेरे पास प्रधानमंत्री का फोन आया कि 6:00 कैबिनेट की बैठक रखी गई है। मैं फिर भी राष्ट्रपति से मिलने गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और बोले पीवी ने ये क्या किया है। मैंने राष्ट्रपति से कहा कि वो देश को टेलीविजन और रेडियो पर संबोधित करें। वो इसके लिए राजी भी हो गए, लेकिन उनके सूचना अधिकारी ने बताया कि इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री से अनुमति लेनी होगी और मुझे बहुत शक है कि वो ये अनुमति देंगे।
6:00 नरसिम्हा राव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस बैठक के 2 विवरण सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध हैं। अर्जुन सिंह अपनी आत्मकथा ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखते हैं,
पूरी बैठक के दौरान नरसिम्हा राव इतने हतप्रभ थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सबकी निगाहें जाफर शरीफ की तरफ मुड़ गईं, मानो उनसे कह रही हों कि आप ही कुछ कहिए। जाफर शरीफ ने कहा, इस घटना की देश सरकार और कांग्रेस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माखनलाल फोतेदार ने उसी समय रोना शुरू कर दिया, लेकिन राव बुत की तरह चुप बैठे रहे।
दूसरा विवरण खुद माखनलाल फोतेदार देते हैं। राष्ट्रपति भवन से जब वो सीधे मंत्रिमंडल बैठक में पहुंचे तब तक बैठक शुरू हुए 20 बीत चुके थे। आगे की कहानी खुद माखनलाल फोतेदार की जुबानी।
वहां हर एक को चुप देखकर मैंने कटाक्ष किया, सबकी बोलती क्यों बंद है? इस पर माधवराव सिंधिया बोले, फोतेदार जी आपको पता नहीं कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है? मैंने प्रधानमंत्री की तरफ देखकर पूछा, राव साहब क्या ये सही है? प्रधानमंत्री मुझसे आंखें नहीं मिला पाए, उनके बजाय कैबिनेट सचिव ने जवाब दिया कि ये सही है। मैंने सारे कैबिनेट मंत्रियों के सामने राव से कहा कि इसके लिए सीधे वो जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा।
उधर कुलदीप नैयर अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में लिखते हैं कि जब कार सेवक मस्जिद को गिरा रहे थे तब नरसिम्हा राव अपने निवास पर पूजा में बैठे हुए थे। वो वहां से तभी हटे जब मस्जिद का आखिरी पत्थर हटा दिया गया। लेकिन नरसिम्हा राव पर बहुचर्चित किताब हाफ लायन लिखने वाले विनय सीतापति इस मामले में राव को क्लीन चिट देते हैं।
एक भी कांग्रेस कैबिनेट मिनिस्टर ने नहीं कहा कि कल्याण सिंह को अभी निकालना चाहिए। कारण तो साधारण था, क्योंकि लॉ सेक्रेटरी और लॉ ऑफिशियल्स कह रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि ओनली व्हेन लॉ एंड ऑर्डर हैज ब्रोकन डाउन कैन यू डिसमिस अ गवर्नमेंट, नॉट व्हेन लॉ एंड ऑर्डर इज अबाउट टू ब्रेक डाउन। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। नरसिम्हा राव चाहते थे कि कोई और कहे कि प्लीज आप प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करें, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो दे चोज टू ट्रस्ट कल्याण सिंह। वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल गए, उनके तो मिनट्स तो ऑनलाइन हैं। ज्योति बसु भी आपके उनके स्पीचेस देखिए नवंबर 92 में, वो कह रहे हैं कि यूजुअली वी डोंट सपोर्ट प्रेसिडेंट्स रूल बट इफ देर इज नो अदर वे टू प्रोटेक्ट द मॉस्क वी विल एग्री टू डिसमिस कल्याण सिंह। वो ये नहीं कह रहे थे कि वी डोंट ट्रस्ट कल्याण सिंह को अभी निकालो। दिसंबर 6 के बाद कितने लोग बोले कि नहीं हम जानते थे कि मस्जिद गिरने वाला है। अगर सोनिया गांधी जानती थी कि मस्जिद गिरने वाला था तो नवंबर 1992 में उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नहीं कल्याण सिंह को डिसमिस करो।
उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने जोर देकर कहा कि इसके लिए किसी और को नहीं बल्कि उन्हें खुद जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह अलग बात है कि उन्हें इस बात पर क्षोभ नहीं बल्कि गर्व था।
अधिकारियों का, कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा।
राजनीतिक विश्लेषक और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय का मानना है कि राव ने जानबूझकर मस्जिद गिर जाने दी, क्योंकि वो बीजेपी को उन्हीं की राजनीति में हराना चाहते थे।
जब अयोध्या आंदोलन तेज हुआ और बाबरी मस्जिद पर खतरा मंडरा रहा है, तो उस खतरे को कम करने की कोई कोशिश पीवी नरसिंह राव ने नहीं की। मेरा अपना मानना है, तथ्यों के आधार पर, लोगों से बातचीत करने के आधार पर, और अब खुद पीवी नरसिंह राव के जो प्रेस एडवाइजर रहे पीवीआरके प्रसाद, उन्होंने एक किताब लिखी है व्हील्स बिहाइंड द वेल। उस किताब में पीवीआरके प्रसाद बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने मस्जिद को गिरने दिया और वे वहां पर मंदिर बनाने के लिए उत्सुक थे, उसके प्रयास किए, इसलिए रामालय ट्रस्ट बनवाया। मुझे भी एक अवसर ऐसा मिला जब हम पीवी नरसिंह राव से, उन दिनों मस्जिद गिराई जा चुकी थी, तो तीन बड़े पत्रकार निखिल चक्रवर्ती, प्रभाष जोशी और आरके मिश्र, बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद ये तीनों गए पीवी नरसिंह राव से मिलने। मैं उनके साथ था। सबको सुनने के बाद नरसिंह राव, मुझे याद है, उन्होंने कहा, क्या आप लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती? मैं इसका अर्थ ही निकालता हूँ कि अपनी राजनीति के तहत और ये समझ करके कि बाबरी मस्जिद ढहा दी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति और विश्व हिंदू परिषद की राजनीति जो है हमेशा के लिए, जो मंदिर की राजनीति है, वो खत्म हो जाएगी और उसको कांग्रेस हथिया लेगी।
कुछ भी हो, इस घटना से न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत बदनामी हुई बल्कि इसने भारतीय समाज को इतनी बुरी तरह से बांट दिया जिसको अभी तक पाटा नहीं जा सका है। कुंवर नारायण की एक कविता याद आती है।
हे राम, जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य, तुम्हारे बस की नहीं उस अविवेक पर विजय जिसके 10-20 नहीं अब लाखों सर, लाखों हाथ हैं और विभीषण भी अब न जाने किसके साथ है। इससे बड़ा क्या हो सकता है हमारा दुर्भाग्य, एक विवादित स्थल में सिमट कर रह गया तुम्हारा साम्राज्य। अयोध्या इस समय तुम्हारी अयोध्या नहीं, योद्धाओं की लंका है, मानस तुम्हारा चरित नहीं, चुनाव का डंका है। सविनय निवेदन है प्रभु की, लौट जाओ, किसी पुराण किसी धर्म ग्रंथ में सकुशल सपत्नीक, अब के जंगल वो जंगल नहीं।
रेहान फजल की विवेचना के साथ ही दिन भर को देते हैं विराम। नमस्कार।